आस्तिक ने उस वक्त कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। उसकी नज़र सिर्फ उस दरवाजे पर थी जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक शेड था और वो अपनी कार से टिक कर खड़ा था। वो बहुत नॉर्मल और रिलैक्स लग रहा था। वो आज अपने साथ ड्राइवर को भी नहीं लेकर आया था। फ़ोन पर कुछ करते हुए बार बार वो अपने चश्मे के अंदर से ही एयरपोर्ट के दरवाजे को देख रहा था, जैसे किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। दरवाज़ा खुला और अंदर से कुछ यात्री बाहर आए, लेकिन आस्तिक अब सतर्क हो गया और उन भीड़ में से वो किसी को तलाशने लगा। तभी वहाँ पर दो लोग आए जो तुरंत ही आस्तिक को देखते हैं और हवा में अपना हाथ हिलाते हैं। आस्तिक ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने भी अपना हाथ हवा में हिलाया और वो लोग जो अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर आए थे, वे एक ट्रॉली में अपना लगेज लेकर आस्तिक के पास आए। जैसे ही वे आस्तिक के पास आए, आस्तिक उन्हें मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी जर्नी अच्छी रही होगी। मिसेज मेहरा, मुझे पता चला कि आप प्लेन में बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए मैंने आपके लिए बिजनेस क्लास अरेंज करवाई थी। क्या आपके यहाँ आने में कोई परेशानी हुई? आस्तिक के सामने इस समय कोई और नहीं बल्कि अरुणिमा के माता पिता मिस्टर ब्रिजेश मेहरा और मिसेज आशा मेहरा खड़े थे। आशा जी ने मुस्कुराते हुए नामे सर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, हमें आने में कोई परेशानी नहीं हुई। ब्रिजेश जी भी कहते हैं, हाँ, हम बहुत आराम से आए हैं। इनफैक्ट पहली बार मैं फ्लाइट में सोते हुए आया हूँ। वैसे थैंक्स आस्तिक, तुमने हमें यहाँ बुलाया। आस्तिक ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। ब्रिजेश जी थोड़े चिंतित नज़र आते हैं और कहते हैं, जब तुमने हमें ये बताया तो हम थोड़े परेशान हो गए थे और इसीलिए तुरंत मुंबई के लिए निकल गए। सब ठीक तो है ना? आस्तिक गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, सब ठीक है, लेकिन मेरे पास आप लोगों को बुलाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वैसे आस्तिक, क्या अरुणिमा को पता है कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? आशा जी ने तुरंत कहा। आस्तिक जल्दी से नामे सर हिलाते हुए बोला, नहीं, उसे बिल्कुल नहीं पता है, बल्कि ये उसके लिए एक सरप्राइज है। ब्रिजेश जी आस्तिक की गाड़ी के डिग्गी में अपना सामान रख रहे थे। आस्तिक ने भी उनकी मदद की। ये देखकर आशा जी और ब्रिजेश जी थोड़े हैरान जरूर हुए थे, क्योंकि ये आस्तिक का नेचर नहीं था, वो किसी के लिए हेल्पफुल नहीं था, लेकिन आज वो बिना किसी स्वार्थ के चुपचाप एक अच्छे दामाद की भूमिका निभा रहा था। वे दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। सामान रखने के बाद आस्तिक ने खुद उनके लिए पीछे की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आशा जी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं और ब्रिजेश जी आगे वाली सीट पर। आस्तिक ड्राइविंग सीट की तरफ जा ही रहा होता है कि उसका फ़ोन बजता है। उसे पता था इस वक्त किसने फ़ोन किया है। वो मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव करता है और कान से लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जान। आस्तिक, तुम उठकर कहीं चले भी गए और तुमने मुझे उठाया भी नहीं? सामने से अरुणिमा की गुस्से भरी आवाज़ आती है। आस्तिक मुस्कुराते हुए गाड़ी में एक नज़र अरुणिमा के माता पिता को देखता है और फिर अरुणिमा से कहता है, हाँ, क्योंकि तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। तुमने वो नोट पढ़ा जो मैंने तुम्हारे लिए नाइट स्टैंड पर रखा था? दूसरी तरफ अरुणिमा का गाल लाल हो गया था। उसके हाथों में एक स्लिप थी जिसमें आस्तिक ने कुछ लिखा हुआ था और उसे पढ़कर अरुणिमा हल्के से कहती है, हाँ, पढ़ा, इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया है। कहाँ हो और घर कब तक आ रहे हो? आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब कि तुमने उसे पढ़ लिया है, तभी तुम्हारे शब्दों से चल रहा है कि तुम शर्मा रही हो। बस इंतज़ार करो, अगले घंटे में मैं घर आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरुणिमा हैरानी से पूछती है। लेकिन आस्तिक कहता है, ये अगर मैं अभी बता दूं तो सरप्राइज कैसा रहेगा? कह तो रहा हूँ, एक घंटे इंतजार करो, फ्रेश हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। जो पहनकर मेरे सामने आई थी वो पहनकर मत रेडी रहना, वरना सरप्राइज खुद सरप्राइज लगेगा। ठीक है, जल्दी घर आओ, अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली और उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। उसके हाथों में जो नोट था वो आस्तिक ने उठने के बाद अरुणिमा के लिए लिखा था, जिस पर लिखा था, कल रात मैं सुकून से सोया था और मुझे ये सुकून तुमने दिया था। थैंक यू अरुणिमा। अरुणिमा के चेहरे पर ये पढ़कर एक शर्म की लाली आ गई थी और फिर उसके बाद जब उसने अपने नाम के साथ बने हुए उस छोटे से दिल को देखा तो उसके अपने दिल में एक टीस होने लगी। वो मुस्कुराते हुए उठती है और जल्दी से शावर लेकर तैयार हो जाती है। कल रात की यादें अभी भी उसके जहन में ताज़ा थीं। उसने सिंपल सी मैक्सी टाइप की एक ड्रेस पहन रखी थी और अपने बालों का एक ही बन बनाया हुआ था। वो जल्दी से नीचे आती है क्योंकि आस्तिक ने कहा था उसके लिए सरप्राइज है, तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे कुछ तैयारी करनी चाहिए या नहीं। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय आस्तिक का इंतज़ार करने के। दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो हर जगह सिक्योरिटी गार्ड और आस्तिक के बॉडीगार्ड मौजूद थे, मतलब कि अरुणिमा बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो घर के अंदर ही रहकर उसका इंतज़ार करने लगी। टीवी पर प्रोग्राम देखते देखते एक घंटा बीत जाता है और जब दरवाजे की डोरबेल बजती है तो एक सर्वेंट जाकर दरवाज़ा खोलती है। पर जैसे ही आस्तिक अंदर आता है और उसके पीछे ब्रिजेश जी और आशा जी अंदर आते हैं तो अरुणिमा की आँखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो अपने माता पिता को देखकर अपनी जगह पर ही जम गई थी और वे दोनों अरुणिमा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माँ, पापा, अरुणिमा हैरानी से उन दोनों को देखती है तो ब्रजेश जी अपनी बाहें फैलाकर अरुणिमा को मुस्कुराते हुए देखते हैं। अपने पापा को अपनी आंखों के सामने देखकर अरुणिमा की आंखें झलक आई थी। वो भागते हुए अपने पापा के पास आती है और अगले ही पल उनके गले से लग जाती है। ब्रजेश जी ने कस के उसे अपने गले से लगा लिया। इस समय उनकी भी आंखों में नमी आ गई थी। आस्तिक ये देखकर भावुक जरूर हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया क्योंकि अरुणिमा अपने माता पिता के बहुत क्लोज थी और सबसे ज्यादा अपने पिता के क्लोज थी। अपने पिता के लिए ही और उनकी कंपनी के लिए ही उसने आस्तिक से शादी करने की मंजूरी दी थी, ये जानते हुए भी कि आस्तिक के साथ उसे कभी वो खुशियां नसीब नहीं होंगी जिसकी वो हकदार है, लेकिन फिर भी अपने पिता के लिए उसने ये किया था। अरुणिमा रोते हुए अपने पापा से अलग होती है और उन्हें देखते हुए कहती है, पापा आप ठीक तो है ना? ब्रजेश जी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चल फिर सकता हूँ, तुम कहो तो दौड़ कर दिखाऊं। अरुणिमा अपने पापा से ही मिलेगी, अपनी माँ से नहीं मिलेगी। जब आशा जी की आवाज आई तो अरुणिमा उनकी तरफ देखने लगती है। आशा जी के साथ बैंगलोर में हुई उसकी बात के बाद अरुणिमा ने आशा जी से बात भी नहीं की थी और ना ही आशा जी ने उनसे बात की थी। आशा जी मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देख रही थी। अरुणिमा ने एक नजर आस्तिक को देखा और फिर आस्तिक को देखा। उन दोनों के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। धीरे से हिचकिचाकर अरुणिमा आशा जी के पास जाती है और सामान्य चेहरे से कहती है, कैसी हो माँ? अरुणिमा आशा जी से गले लगने के लिए आगे नहीं बढ़ी, लेकिन आशा जी खुद आगे बढ़कर अरुणिमा को गले लगाते हुए कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी है कि तुमने ये फैसला लिया है।
अरुणिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी आशा जी के गले लगी हुई थी। उसे थोड़ा सा सुकून जरूर मिल रहा था। अपने माता पिता को देखकर वो खुश जरूर थी, लेकिन वो हैरान भी थी। फिर उसने आस्तिक की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। फिर उसके बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। एक सर्वेंट उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर रहा था। अरुणिमा हैरानी से ब्रजेश जी को देखते हुए बोली, लेकिन पापा आप अचानक से मुंबई में कैसे, और आप आ रहे हैं बताया क्यों नहीं? ब्रजेश जी हंसते हैं और कहते हैं, अरे ये सब आस्तिक ने किया है, उसी ने हमें यहाँ बुलाया है ताकि हम तुमसे मिल सके। पहले तो हम भी हैरान हो गए थे कि आस्तिक हमें यहाँ क्यों बुला रहा है, फिर उसने बताया कि बैंगलोर में तुम हमसे ठीक से मिल नहीं पाई थी और उसके बाद तुम मेरे लिए काफ़ी परेशान भी हो रही थी, मेरा एक्सीडेंट और फिर मेरा ऑपरेशन, उसके बाद आस्तिक के काम की वजह से तुम मुझे हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आ पा रही थी, इसीलिए आस्तिक ने मुझे यहाँ बुला लिया। अब आराम से मुझे देखो और सारी टेंशन दूर करो कि तुम्हारा पापा अब ठीक है। ब्रजेश जी की बात सुनकर अरुणिमा एकदम से हैरानी से आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, आस्तिक ये सब आपने किया है? अरुणिमा का सवाल सुनकर पहले तो आस्तिक मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर उसके चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई और वो चिढ़ते हुए कहता है, नहीं मेरे जुड़वा भाई ने किया है। ब्रजेश और आशा जी उसकी बात पर हंसने लगते हैं और अरुणिमा मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तो बस पूछ रही थी। तभी आस्तिक का फोन बजता है। आस्तिक एक नज़र अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है और उसकी नज़रों में एक तीखापन आ जाता है। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, मिस्टर मेहरा आप यहाँ पर आराम से रहिए, अपनी बेटी के साथ वक्त बिताइए। बिल्कुल मत सोचिएगा कि यह आपकी बेटी का घर है, बल्कि आप लोग इसे अपना ही घर समझिए। मुझे कुछ काम है तो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। उसके बाद आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए बोला, अरुणिमा कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या चल रहा है आस्तिक के दिमाग में और वो क्यों अरुणिमा के माता पिता को बैंगलोर से मुंबई लेकर आता है? क्या कुछ ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है?